नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, हिंदी भाषा दिल्ली वासियों की पहचान, संस्कार और सांस्कृतिक गौरव की धरोहर। केंद्र सरकार ने दिल्ली में सड़कों के विकास के लिए 803 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया, 5 गिरफ्तार। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने दिल्ली के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त प्रथम को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। और सरस आजीविका मेला राजधानी के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में जारी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरंडा हाउस कॉलेज के सभागार में एक निजी मीडिया संस्थान के एक संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि हिंदी भाषा दिल्ली वासियों की पहचान, संस्कार और सांस्कृतिक गौरव की धरोहर है। उन्होंने कहा कि इसका संरक्षण और विकास सभी का सामूहिक दायित्व है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसकी गरिमा बनाए रखेंगी।
जब आप मन से खुल कर आनंद लेना चाहें, अपने शब्दों को, भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करना चाहे, तो आपकी वो मातृभूमि की भाषा हिंदी ही आपके काम आती है। जो जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं, जितनी ये बच्चियां हैं, देश में, विदेश में, इस विश्व के हर कोने में पहुंच करके भारत का और भारतीयता का गुणगान करें और जयगान करें।
केंद्र ने दिल्ली की सड़कों के विकास के लिए 803 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इससे दिल्ली की सड़क संपर्क को मजबूती मिलने के साथ ही राजधानी के समग्र विकास को नई गति मिलेगी। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में डबल इंजन सरकार की दूरदर्शी सोच और सहयोगात्मक दृष्टिकोण के कारण राष्ट्रीय राजधानी प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू रही है। उन्होंने कहा कि यह कदम दिल्ली को एक समृद्ध, सुगम और आधुनिक राजधानी बनाने वाला सिद्ध होगा। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने कई राज्यों से 5 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। अपर पुलिस आयुक्त प्रमोद सिंह कुशवाहा ने बताया कि गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी 20 से 26 वर्ष की आयु के हैं। श्री कुशवाहा ने कहा कि मामले का मुख्य आरोपी अशर दानिश रांची निवासी है और पाकिस्तान के अपने सहयोगी के संपर्क में था।
पैन इंडिया टेरर मॉड्यूल बस्ट किया है अंडर द एजेस ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसीज और इन कोऑर्डिनेशन विद स्टेट पुलिस एंड एटीएस ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड तेलंगाना। इसमें 11 लोग डिटेन किए थे, पर फाइनली अरेस्ट हमने 5 लोगों को किया है। इनका प्लान था कि एक जगह एक्वायर करेंगे और उसके बाद में एक टीम तैयार करेंगे, जिसको ये कह रहे थे कि ये हमारा लश्कर होगा खिलाफत के लिए, गजवा हिंद या जिहाद करेंगे।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पश्चिमी दिल्ली के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ब्यूरो ने बताया कि आरोपी ने शिकायतकर्ता के विरुद्ध आरडीए कार्रवाई को अनुकूल तरीके से निपटाने के लिए 3 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी, लेकिन बातचीत के बाद आरोपी अधिकारी 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेने के लिए सहमत हो गया था। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की प्रगति और लंबित परियोजनाओं को लेकर एक समीक्षा बैठक की। एक रिपोर्ट।
इस समीक्षा बैठक में चांदनी चौक से लोकसभा सांसद प्रवीण खंडेलवाल, क्षेत्र के विधायक, पार्षद और संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि बैठक में क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं और उनके समाधान को लेकर चर्चा की गई। बैठक में विभिन्न विधानसभाओं में अतिक्रमण और ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए विचार विमर्श भी हुआ। इस बैठक के दौरान श्रीमती गुप्ता ने अधिकारियों को पुरानी दिल्ली के बाजारों में महिला शौचालय बनाने का खाका तैयार करने के निर्देश भी दिए। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने कहा है कि दिव्यांगजनों के लिए परीक्षाएं इस वर्ष 31 दिसंबर तक पूर्व दिशा निर्देशों के अनुसार ही आयोजित की जाएंगी। इनमें दिव्यांगजनों के लिए रोजगार, व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश से संबंधित परीक्षाएं शामिल हैं। विभाग ने सभी मंत्रालयों, विभागों और परीक्षा निकायों से इन दिशा निर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली नगर निगम के उप महापौर जय भगवान यादव ने आज हिंदू राव अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान श्री यादव ने अस्पताल परिसर की व्यवस्थाओं के बारे में संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उप महापौर ने अस्पताल में उपचार करा रहे रोगियों और उनके परिजनों से भी बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना और अधिकारियों को तत्काल समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्री यादव ने कहा कि मरीजों और उनके परिजनों को स्वच्छ, सुरक्षित और सुविधाजनक माहौल देना निगम की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि निगम अपने अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूत बनाने के लिए निरंतर काम करता रहेगा और जनता को सर्वोत्तम सेवाएं उपलब्ध कराएगा। सरस आजीविका मेला 2025 राजधानी दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में चल रहा है। पहली बार इस मेले का आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरस आजीविका मेला के सातवें दिन आज मेले में बड़ी संख्या में आगंतुक भ्रमण के लिए पहुंच रहे हैं।
इस वर्ष लखपति दीदी थीम पर आधारित ये मेला देश के स्वयं सहायता समूहों की 400 से अधिक महिला उद्यमियों को एक साथ ला रहा है। इस वर्ष मेले में हस्तशिल्प, हस्तकला और घरेलू उत्पादों के साथ साथ इंडियन फूड कोर्ट भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। भारत की विविधता और विभिन्न राज्यों की कला, संस्कृति और खान पान को प्रस्तुत करते हुए यह मेला प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों से भी लोगों को आकर्षित कर रहा है। मेले में आ रहे आगंतुकों की सुविधा के शटल सेवा, चिकित्सा सहायता और स्वच्छ शौचालय जैसी सुविधाओं की व्यवस्था भी की गई है। मेले में मुंबई से भाग लेने आई एक आगंतुक मनीषा पांडे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि इस मेले के जरिए उन्हें सभी राज्यों की कला, संस्कृति और खान पान को एक ही जगह अनुभव करने का अवसर मिलता है।
आई लाइक दिस एक्सपीरियंस अलॉट सरस आजीविका मेला का। आई हैव बीन टू सरस आजीविका फ्रॉम लास्ट 4-5 इयर्स। सो ये कैसा एक्सपीरियंस है कि आप हर स्टेट को एक्सपीरियंस कर सकते बिना उस पर्टिकुलर स्टेट में जाए, उनकी हर चीजें, उनका खाना एंड एवरीथिंग। सो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, यू जस्ट कम हियर, विजिट एवरी स्टॉल एंड ऐसे आपको सब पता चल जाएगा कहाँ पे क्या अच्छा मिलता है, कहाँ पे क्या अच्छा है।
वहीं मेले में पहली बार भ्रमण के लिए आई एक अन्य आगंतुक पूनम वशिष्ठ ने बताया कि उन्हें अलग अलग स्टॉल पर विभिन्न राज्यों से जुड़े हस्त निर्मित सामान देखने को मिल रहे हैं और वह उन्हें खरीद भी रही हैं।
सरस मेले का बहुत सुना था तो मन था घूमने का, आज मैं यहाँ शाम को अभी घूमने आई हूँ। काफी कुछ है देखने को, यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स के बहुत सारे कपड़े लगे हुए हैं, बहुत सारी हैंडमेड सोप, शैम्पू, अचार, पापड़, बहुत कुछ है। मैंने भी शॉपिंग की है यहाँ से, मुझे तो बहुत पसंद आया।
मेले में आगंतुक प्रतिदिन सुबह 11 बजे से रात 9:30 बजे तक जा सकते हैं और इस महीने की 22 तारीख को मेले का अंतिम दिन है। प्रादेशिक समाचार के लिए सकलैन अख्तर।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे शनिवार से कश्मीर घाटी के बड़गाम से दिल्ली के आदर्श नगर स्टेशन तक एक दैनिक मालगाड़ी शुरू कर रहा है। एक रिपोर्ट।
ये रेलगाड़ी व्यक्तिगत व्यापारियों और फल उत्पादकों को पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन एक पार्सल वैन बुक करने की सुविधा प्रदान करेगी। 8 पार्सल वैन वाली ये ट्रेन बड़गाम रेलवे स्टेशन से सुबह 6:15 बजे रवाना होगी और अगले दिन सुबह 5 बजे आदर्श नगर रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। ये रेलगाड़ी देश में फल और हस्तशिल्प विक्रेताओं को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने का एक विकल्प प्रदान करेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि जम्मू श्रीनगर लाइन शुरू होने से कश्मीर घाटी का संपर्क अब और बेहतर हो गया है। उन्होंने बताया कि बड़गाम से दिल्ली के लिए आज से चलाई जा रही इस मालगाड़ी में 2 डिब्बे सेब से लदे हैं। पार्सल वैन 23 मीट्रिक टन सेब ले जा सकेंगी। रेलवे मांग बढ़ने पर अतिरिक्त पार्सल वैन उपलब्ध कराएगा। प्रादेशिक समाचार के लिए मैं प्रशांत कुमार।
स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राज्य सरकारों द्वारा डेंगू और मलेरिया की रोकथाम और नियंत्रण की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने राज्यों, स्थानीय निकायों और समुदायों से रोकथाम तथा नियंत्रक उपायों में तेजी लाने का आग्रह किया। श्री नड्डा ने सभी मुख्यमंत्रियों के सलाहकारों को आने वाले महीनों में जागरूकता गतिविधियों को बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों को स्थिति की समीक्षा करने और 20 दिन के भीतर कार्य योजना तैयार करने की सलाह दी। श्री नड्डा ने कहा कि देश में मलेरिया से होने वाली मृत्यु में लगभग 78% की गिरावट आई है और 2022 से 2024 के बीच 160 जिलों में मलेरिया का एक भी मामला सामने नहीं आया है। 12 दिवसीय अखिल भारतीय थल सैनिक शिविर 2025 आज नई दिल्ली में संपन्न हो गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस शिविर में देश भर के 17 राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले 1,500 से अधिक कैडेटों ने भाग लिया। इस शिविर में कैडेटों की शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को चुनौती देने वाले हथियार, मैप रीडिंग, दूरी का आकलन, फील्ड सिग्नल तथा स्वास्थ्य और स्वच्छता कार्यक्रम शामिल किए गए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1893 में शिकागो की विश्व धार्मिक संसद में स्वामी विवेकानंद के संबोधन को साझा किया है। स्वामी विवेकानंद के ऐतिहासिक संबोधन की 132वीं वर्षगांठ पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये एक ऐतिहासिक क्षण है जिसमें सद्भाव और भाईचारे पर बल दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस सबसे यादगार और प्रेरणादायक क्षणों में से एक था। स्वामी विवेकानंद द्वारा शिकागो धर्म संसद में दिए गए ऐतिहासिक संबोधन की 132वीं वर्षगांठ पर आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शहरवासियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि स्वामी विवेकानंद की वाणी ने भारत की सनातन परंपरा, विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम के संदेश को पूरे संसार तक पहुंचाया। उन्होंने इस दिवस पर सभी से स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरणा लेकर विकसित भारत, विकसित दिल्ली के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर कार्य करने का संकल्प लेने की भी अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत की 75वें जन्मदिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री भागवत ने अपना संपूर्ण जीवन सद्भावना और भाईचारे के लिए समर्पित कर दिया। श्री मोदी ने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम संघ प्रमुख का जीवंत उदाहरण है जो हमें बताता है कि सीमाओं से ऊपर उठकर समाज विश्वास, भाईचारा और समानता से मजबूत होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी इस महीने की 17 तारीख से देश में सेवा पखवाड़ा मनाएगी। नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि सेवा पखवाड़ा महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सेवा पखवाड़ा के दौरान विभिन्न विषयों पर आधारित अनेक कार्यक्रम की योजना बनाई गई है। श्री यादव ने कहा कि श्री मोदी ने सेवा और स्वच्छता जैसे मूलभूत मूल्यों को भारत की राजनीति में आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि प्रकृति की रक्षा के प्रति प्रधानमंत्री मोदी की संवेदनशीलता के कारण ही भारत अब पर्यावरण संरक्षण की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता में 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में होने वाली T20 मैच को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। 4 कानून के विद्यार्थियों द्वारा दायर जनहित याचिका में तर्क दिया गया कि पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के साथ खेलना राष्ट्रीय गरिमा को ठेस पहुंचाता है। एशिया कप क्रिकेट में आज ग्रुप बी में हांगकांग के साथ मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। कल पाकिस्तान का मुकाबला ओमान से होगा। राजधानी दिल्ली के अधिकतर इलाकों में आज दिन भर मौसम साफ रहा। दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। नौसेना कल हरियाणा के गुरुग्राम में INS अरावली का जलावतरण करेगी। ये देश की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, हिंदी भाषा दिल्ली वासियों की पहचान, संस्कार और सांस्कृतिक गौरव की धरोहर। केंद्र सरकार ने दिल्ली में सड़कों के विकास के लिए 803 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया, 5 गिरफ्तार। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने दिल्ली के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त प्रथम को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। और सरस आजीविका मेला 2025 राजधानी दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में जारी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।